नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के पाठ में। आज के पाठ का हमारा विषय है संत काव्यधारा के कवि संत रैदास, दादूदयाल, सुंदरदास, मलूकदास, रज्जब। संत रविदास, दादूदयाल, सुंदरदास, मलूकदास और संत रज्जब संत काव्य परंपरा के प्रमुख कवियों में हैं, जिनका साहित्य भारतीय मनोचेतना का हिस्सा है और भारतीय लोक जीवन में प्राण फूंकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे संत रैदास के जीवन और उनके योगदान के बारे में। मध्यकालीन संतों और भक्तों के जन्म, मृत्यु व पारिवारिक जीवन के बारे में आम तौर पर मत विभिन्नताएं हैं। संत रविदास की कृतियों में उनके रैदास, रोहिदास, रायदास, रुईदास आदि अनेक नाम देखने को मिलते हैं। जन्म के बारे में भी कई अटकलें लगाई जाती हैं। संत रविदास का जन्म बनारस छावनी के पश्चिम की ओर 2 मील दूरी पर स्थित मांडूर गांव में हुआ, जिसका पुराना नाम मनवाडीह था। रविदास के पिता का नाम राघव अथवा रघु तथा उनकी माता का नाम कर्मा देवी तथा पत्नी का नाम लोना था। रविदास ने अपनी वाणी में अपने पेशे व जाति के बारे में बार बार लिखा है। वे मृत पशु ढोने का कार्य करते थे। मेरी जाति कूट बाढ़ला ढोर ढुवंता, नित ही बनारसी आस पासा, जाति ओछी पाती ओछी, ओछा जन्म हमारा। महापुरुषों के जीवन से संबंधित चमत्कारिक घटनाएं समाज में प्रचलित हैं। जनश्रुतियों एवं किंवदंतियों के माध्यम से लोग अपने आदर्श पुरुष, महापुरुष एवं नायक के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं या अपने अप्रिय के प्रति घृणा अथवा निंदा व्यक्त करते हैं। कई बार तो किसी व्यक्ति के बारे में ऐसी किंवदंतियां प्रचलित हो जाती हैं जिससे उस व्यक्ति का मूलभूत विरोध रहा है। संत रविदास के बारे में भी ऐसी ऐसी जनश्रुतियाँ हैं। भगवान का स्वयं साधु के रूप में आकर इन्हें पारसमणि प्रदान करने पर अस्वीकार करना, भगवान के सिंहासन के नीचे से सोने की 5 मोहरों का नित्य प्राप्त होना, गंगा का हाथ निकालकर ब्राह्मण से रविदास की भेंट स्वीकार करके बदले में रत्न जड़ित सोने का कंगन प्रदान करना, राजा की सभा में ब्राह्मणों का विवाद में पराजित होना, जल में शालिग्राम की मूर्ति तिराना तथा सिंहासन से मूर्ति का रविदास जी की गोद में आ बैठना, भोज में अनेक रूप धारण कर प्रत्येक ब्राह्मण के मध्य एक एक रविदास का विराजमान होना आदि सर्वाधिक प्रचलित हैं। संत रविदास ने स्पष्ट तौर पर कहा कि राम और रहीम, कृष्ण और क्रीम, ईश्वर और खुदा में कोई अंतर नहीं है, ये सब एक ही हैं, ये मन में ही बसते हैं, इनको प्राप्त करने के लिए घर त्यागने की जरूरत नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसी कर्मकांड की नहीं बल्कि अपने आचरण को पवित्र करने की जरूरत है। राघो कृष्ण करीम हरि, राम रहीम खुदाए, रविदास मोरे मन बसहीं, कहूँ खोजहूँ बन जाए। रविदास ने बार बार इस बात को रेखांकित किया है कि हिंदुओं का ईश्वर और मुसलमानों का खुदा एक ही हैं, सबका मालिक एक ही है। जो लोग ईश्वर के नाम पर लड़ते हैं वे ईश्वर की ही अवहेलना करते हैं। केशव, कृष्ण और क्रीम में सिर्फ नाम का ही फर्क है, तत्वतः कोई अंतर नहीं है। अलख अलह खालिक खुदा, कृष्ण करीम करतार, राम है नाम अनेक हैं, कह रविदास विचार। रविदास ने न केवल राम और रहीम की एकता के साथ हिंदू और मुसलमानों के सबसे पवित्र माने जाने वाले धार्मिक स्थलों में भी कोई अंतर नहीं किया। रविदास का मानना था कि काबा और काशी में कोई अंतर नहीं है। रविदास हमारो राम जोई, सोई है रहमान, काबा काशी जाने ही दो एक समान। गुरु रविदास ने हिंदू और मुस्लिम में कोई अंतर नहीं किया, उनको एक ही माना। हिंदू तुर्क में नहीं कुछ भेदा, सब में एक रकत अरुमासा। दो एक हु पूजा को नाही पेख्यो सोध रविदासा। रविदास के लिए धर्म एक नैतिक सत्ता है। संत रविदास ने मानवतावादी दृष्टि को अपनाकर मनुष्यों में धार्मिक व सामाजिक एकता व बराबरी को मान्यता दी। संत रविदास ने अपनी धार्मिक आध्यात्मिक जिज्ञासा व जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी धर्म स्थल के निर्माण पर जोर नहीं दिया। गुरु रविदास ने लिखा है कि ईश्वर भक्त को अपने इष्ट की आराधना करने या ढूंढने के लिए किसी पूजा स्थल में जाने की जरूरत नहीं है। तुरक मसीती अल्लाह ढूंढई देहरे हिंदू राम गुसाई। रविदास ढूंढिया राम रहीम को जई मसीत देहरा नाही। जाति भारतीय धर्म व नीति के विमर्श के केंद्र में रही है। वर्ण धर्म के पालन का आग्रह स्मृतियों और अन्य ग्रंथों में भरा पड़ा है। महात्मा बुद्ध महावीर जैन के आंदोलनों के बाद सिद्धों नाथों से होती हुई कबीर नानक रविदास आदि संतों की वाणी व संघर्ष में इसके विरुद्ध आंदोलन मुख्य रहा है। जाति व्यवस्था के रहते भाईचारा और मानवता स्थापित नहीं हो सकती। समाज में जाति के विष की अनेक परतें हैं, जैसे केले के पत्तों में पत्ते होते हैं। यह समाज में विभिन्न स्तर बनाकर लोगों में स्थायी विभाजन पैदा करती है। मानव जाति की एकता और मनुष्यता के मूल्यों के प्रसार व स्थापना में जाति सबसे बड़ी बाधा है। जात जात में जात है ज्यों केलन में पात। रविदास न मानुष जुड़ सके जोलों जात न जात। जात पात के फेर में उरज रही सब लोग। मानुषता को खात ही यह जात कर रोग। जाति के आधार पर मनुष्य मनुष्य में भेदभाव करने को संत रविदास ने मनुष्यता का अपमान समझा। उनका मानना था कि सभी मनुष्यों को बनाने वाला एक ही ईश्वर है, सब में समान रूप से मौजूद है, उसी से सबका विस्तार हुआ है। इसलिए जो वर्ण अवर्ण ऊंच नीच पर विचार करते हैं वे मूर्ख हैं। एक है माटी के सब भांडे सबका एको सिर्जन हारा। रविदास व्यापै एको घट भीतर सबको एक है घड़ै कुम्हारा। संत रविदास ने कहा कि मानव प्रेम ही ईश्वर की भक्ति है। मानव प्रेम को ईश्वर की तपस्या के नाम पर किए जाने वाले कर्म कांडों से अधिक महत्वपूर्ण माना। जिस व्यक्ति के मन में मानव के प्रति प्रेम नहीं है, वह चाहे जितनी मर्जी भक्ति कर ले, चाहे जितनी तपस्या कर ले, उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। बन खोज ही पिया न मिल ही बन में प्रीतम ना। रविदास पिया है बस रहो मानव प्रेम ही माह। ब्राह्मणवाद सुचिता पवित्रता का ढोंग रचता है। रविदास ने उसकी पोल खोलते हुए सवाल लगाया। वे पूजा में जो दूध प्रयोग करते हैं उसे बछड़ा झूठा करता है, फूलों को भंवरा झूठा कर देता है। दूध त बछरे थनहु बिटारियो फूल भवर जल मीन बिगारियो। माई गोविंद पूजा कहले चरावो अवर फूल अनूप न पावो। रविदास ने भक्ति के उन रूपों का खंडन किया जिनमें बाहरी दिखावों पर जोर रहता है। रविदास ने कहा कि नाचने गाने तप करने और पैर धोने से क्या होता है, सिर मुंडाने से क्या होता है, तत्व को पहचानने में ही भक्ति है। भक्ति ऐसी सुनहु रे भाई आई भक्ति तब गई बड़ाई। कहा भयो नाचे और गायो कहा भयो तब कीने कहा भयो जे चरण पखारे जो लो तत्व न चीने। कहा भयो जे मूंड मुड़ायो कहा तीर्थ व्रत कीने, भेष लिया पर भेद न जान्यो, अमृत लेई विषय सुख मान्यो, तिलक दियो पै तपने न जाई, माला पहरे घनेरी लाई, कह रविदास मरम जो पाऊं, देव निरंजन सत कर ध्याऊं। संत रविदास ने श्रम को ईश्वर के बराबर दर्जा दिया, जिसका अर्थ है कि श्रम करने वालों को समाज में उच्च स्थान पर बिठाना। अभी तक पोथी तप माला जपने को ही पूजा के तौर पर लिया जाता था, और इसका प्रभाव यह होता था कि शारीरिक श्रम करने वालों को हे नज़र से देखा जाता था, जो उनके सामाजिक आर्थिक शोषण को वैधता देता था। जिह्वा सो ओंकार जप, हत्थन सो कर कार, राम मिल ही घर आए कर, कह रविदास विचार। रविदास ने बेगमपुरा नामक नगर की कल्पना करके समाज के प्रति अपनी सोच को उजागर किया है। बेगमपुरा की कल्पना असल में एक फैंटसी की तरह है। ऐसा नगर शायद ही दुनिया में कहीं मौजूद हो, लेकिन रविदास के मन व चेतना में उसकी छवि स्पष्ट है। बेगमपुरा शहर को नाव दुख अंदोह नहीं तेह ठाव, ना तस्वीस खिराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल, अब मोहि खूब वतन गह पाई, उहां खैर सदा मेरे भाई, कायम दायम सदा पातशाही, दोम न सोम एक स्वाही, आबा दानु सदा मसहूर, उहां गनी बस ही मामूर, त्यू त्यू सैल करही ज्यू भावै, महरम महल न को अटकावै, कह रविदास खलास चमारा, जो हम सहरी सो मीत हमारा। गुरु रविदास ने जिस तरह के शहर की कल्पना की है, उस तरह से शायद ही किसी संत भक्त या अन्य दार्शनिक ने की हो। वे मनुष्य को हर प्रकार के कष्ट से मुक्त देखना चाहते हैं। उनके दिमाग में एक न्यायपूर्ण समाज की कल्पना है, जिसमें ताकतवर और कमज़ोर दोनों रह सकते हों, जिसमें कोई ताकतवर कमज़ोर को न सताए। अब हम बात करेंगे दादू दयाल के बारे में। दादू दयाल के आरंभिक जीवन और शिक्षा दीक्षा के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती। दादू दयाल का संबंध रुई धुनने वाली निम्न जाति समझे जाने वाली धुनिया से था। वे 26 वर्ष की आयु में सांभर राजस्थान आए। उन्होंने काशी बिहार का भ्रमण करके साधु संतों व जोगियों से विचार विमर्श किया। सांभर में ही दादू ने अपने उपदेश व प्रवचन देने आरंभ किए। उनके मानवतावादी उपदेशों व संदेश को सुनकर उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। सांभर को अपने ज्ञान के प्रसार का केंद्र बनाने के बाद आमेर, जहां अभी भी दादू द्वारा बना हुआ है, वे वहां गए और यहीं रहे। अजमेर, दिल्ली, आमेर की यात्रा करके नराणा राजस्थान चले गए। यहीं इनकी मृत्यु हो गई। संत दादू दयाल ने गुजराती और हिंदी में पद लिखे। दादू वाणी का सर्वाधिक प्रामाणिक पाठ आचार्य परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित दादू ग्रंथावली माना जाता है। इसमें कुल 2453 साखियां और 426 पद हैं। दादू ने अपने जीवन काल में परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की, जो उनकी मृत्यु के बाद दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनके 52 शिष्यों के थांबे प्रचलित हुए। इनके थांबे अब भी अधिकतर पंजाब, राजस्थान व हरियाणा में है। इस क्षेत्र में अनेक स्थानों पर दादू द्वारों की स्थापना की गई थी। उनके शिष्यों में गरीबदास, बधना, रज्जब, सुंदरदास, जनगोपाल आदि प्रसिद्ध हुए। समाज में व्याप्त कुरीतियों का विरोध किया। हिंदू और मुसलमानों के भेदभाव को व्यर्थ बताते हुए दादू ने कहा कि सभी मनुष्यों में एक ही आत्मा का निवास है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। दादू सब हम देशा सोध सब, दूसर नाही आन, सब घट ये कह आत्मा, क्या हिंदू मुसलमान। दादू ने कहा कि हिंदू और मुसलमान समाज में उसी तरह हैं जैसे मनुष्य के शरीर में हाथ हैं, पैर हैं और कान हैं, आँखें हैं। इनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं है। उसी तरह हिंदू और मुसलमान में कोई अंतर नहीं है। दोनों भाई हाथ पग, दोनों भाई कान, दोनों भाई नैन हैं, हिंदू मुसलमान। दादू दयाल अल्लाह और राम में कोई भेद नहीं करते थे। उनके लिए ये दोनों बराबर थे। वे एक ईश्वर को मानते थे, मंदिर मस्जिद के झगड़े को झूठा समझते थे। वे मूल तत्व को पकड़ने की बात कहते थे। अल्लाह कहो, भावे राम कहो, डाल तजो सब मूल गहो। दादू ने पाखंडों की जमकर आलोचना की है। बाहरी दिखावा धर्म नहीं है। पूजा पद्धतियों में धर्म व ईश्वर उपासना नहीं है, बल्कि मानव के दुख तकलीफ को समझना और उसके दुखों को दूर करना ईश्वर की पूजा है। विभिन्न तरीकों से संसार से पलायन करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। कितने ही मुल्ला, पीर, पैगंबर, मुनि, योगी, पंडित अपने अपने कर्मकांड की अनुपालना करते हैं, लेकिन वह सब व्यर्थ है। को पंथ काहू कह चले, मैं और न जानो, दादू जिन जुग सिर जिया नाही को मानो। दादू ने बाहरी दिखावों को त्याग कर अपने अंतर्मन को स्वच्छ करने पर जोर दिया तथा बाहरी कर्मकांडों की आलोचना की। दादू केते पुस्तक पढ़मुए, पंडित वेद पुराण, केते ब्रह्मा कथ गए जाहिन राम समान। मरने के बाद स्वर्ग की कल्पना पर दादू ने प्रहार किया। मुआ पिछे मुक्ति बतावे, मुआ पिछे मेला, मुआ पिछे अमर अभय पद, दादू भूले गेला। वे हिंदू और मुसलमानों के पाखंडों और पूजा विधानों को नहीं मानते थे। वे मानव धर्म में विश्वास करते थे, जिसमें ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं था। दादू ने सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया और निरपक्ष धर्म की स्थापना की। दादू ना हम हिंदू होंगे, ना हम मुसलमान, षड दर्शन में हम नहीं, हम राते रहमान। दादू ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हिंदू और मुसलमानों के भेदभाव संस्थागत धर्म के कर्मकांडों के कारण हैं। संस्थागत धर्म को बढ़ावा देने वाले काजी, मुल्लाओं और पंडे पुजारियों व ब्राह्मणों ने धर्म के वास्तविक मर्म को छोड़कर बाहरी दिखावे को प्रतिपादित किया है। हिंदू पूर्व में मंदिर जाते हैं और मुसलमान पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, लेकिन वे ईश्वरीय तत्व को भुला देते हैं। दादू दयाल ने मंदिर और मस्जिद दोनों का ही विरोध किया है, क्योंकि वे धर्म के आंतरिक स्वरूप में विश्वास करते थे और बाहरी कर्मकांडों का विरोध करते थे। हिंदू लागे देहरा, मुसलमान मसीत, हम लागे एक अलग सो, सदा निरंतर प्रीति। दादू दयाल ने ईश्वर को एक माना, उसको अनेक नामों से राम, रहीम, केशव, गोविंद, गोपाल, गोसाई, साईं, रब, अल्लाह, ओंकार, वासुदेव, परमानंद, साहिब और सुल्तान, गरीब निवाज और बंदी छोड़ नामों से संबोधित किया। संत दादू दयाल ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के करीब लाने का काम किया। दोनों संप्रदायों के लोग उनके अनुयायी बने। अब हम बात करेंगे सुंदरदास के बारे में। सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी में जयपुर के निकट दौसा में हुआ। 6 साल की आयु में ही ये दादू दयाल के शिष्य हो गए थे। सुंदरदास ने देश में यात्राएं की। ये पूर्व में बंगाल तक, पश्चिम में द्वारका तक, उत्तर में बद्रिकाश्रम तक और दक्षिण में मध्य देश तक गए। सुंदरदास संत कवियों में सबसे अधिक शिक्षित थे। बताए तो उनके 42 ग्रंथ जाते हैं, लेकिन इनकी ख्याति है सुंदर विलास ग्रंथ में संकलित पदों के कारण। इनकी परिमार्जित भाषा बहुत ही प्रभावशाली है। लोक जीवन में व्याप्त रूढ़ियों पर कड़े प्रहार, सामाजिक व्यवहार की विसंगतियों के खिलाफ विद्रोह के स्वर के दर्शन इनके काव्य में होते हैं। सुंदरदास के दोहों और गेय पदों में गुजराती, पंजाबी, सिंधी और फारसी भाषा के शब्दों का बहुतायत में प्रयोग मिलता है। सन 1689 में सांगानेर में ये प्रस्थान कर गए। इस तरह संत काव्य परंपरा में अनेक कवि हुए जिन्होंने अपनी वाणियों से समानता और प्रेम का भाव जगाया और धार्मिक आडंबरों, अंधविश्वासों और सामाजिक कुरीतियों पर कुठाराघात करके समाज को जगाया। इस धारा का साहित्य लोक जीवन की चेतना का हिस्सा है। दोस्तों, आज हमने पढ़ा संत रविदास, दादूदयाल, सुंदरदास, मलूकदास और संत रज्जब के बारे में। मिलते हैं अगले पाठ में। तब तक के लिए धन्यवाद।